ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ,
ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ,
ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ. ವೋ ರಾಮತಾಲ್ ಮೇ ಮೇನೆ ಆಪ್ಕೋ ಕಾಲಿಯಾಘಾಟ್ ಕಿ ಕಥಾ ಬತಾಯಿ. ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಅಭಿ ಕಾಲಿಯಾಘಾಟ್ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಔರ್ ಅಭಿ ಥೋಡಾ ಅಂಧೇರಾ ಹೋಗೇ, ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಕೋ ಮೇ ದಿಖಾಉಂಗಾ ವಹಾಂ ಪರ್ ಅಮೃತ್ ಕಾ ಕಲಶ್ ಕಹಾಂ ಪರ್ ಹೈ, ಪೇಡ್ ಕಹಾಂ ಪರ್ ಹೈ, ವಹಾಂ ಪರ್ ದಿಖಾಉಂಗಾ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಹಮ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಕೆ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಕೆ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಕಥಾ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಯಹಾಂ ಬತಾತಾ ಹೂಂ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಕಥಾ ಐಸಿ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಬಹುತ್ ದೇರ್ ತಕ್ ಜಲ್ ಮೇ ರಹೆ ಕಾಲಿಯಾ ಕಾ ಸಾಮನಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ, ತೊ ವೋ ಠಂಡಕ್ ಮೇ ರಹೆ, ಬಹುತ್ ಜಲ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ದೇರ್ ತಕ್ ರಹೆ. ತೊ ಜಬ್ ಕಾಲಿಯಾ ಕಾ ಮರ್ದನ್ ಹುವಾ, ಕಾಲಿಯಾ ಚಲೇ ಗಯೆ, ಸಬ್ ಕುಛ ಲೀಲಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಗಯಿ, ತೊ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ಠಂಡ ಲಗಿ, ಶರೀರ ಉನ್ಕಾ ಠಂಡ ಸೇ ಕಾಂಪ್ ರಹಾ ಥಾ. ತೊ ವೋ ವಹಾಂ ಸೇ ಆಗೇ ನಿಕಲೆ, ಜಲ್ ಸೇ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲೆ, ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಪರ್ವತ್ ಹೈ, ಛೋಟಾ ಸಾ ಪರ್ವತ್, ಉಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಟೀಲ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಹಿಲಾಕ್, ಮರಾಠಿ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಟೇಕಡಿ, ಛೋಟಿ ಸಿ ಟೇಕಡಿ. ತೊ ಭಗವಾನ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚಡ್ ಗಯೆ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಜಾಕೆ ಬೈಠ ಗಯೆ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ವಹಾಂ ಜಾಕೆ ಬೈಠ ಗಯೆ, ತೊ 12 ಸೂರ್ಯ ವಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೆ. ಹಮಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇ ಏಕ್ ಸೂರ್ಯ ಹೋತಾ ನಾ, ತೊ 12 ಸೂರ್ಯ ಆಯೆ ವಹಾಂ ಪರ್, ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಕೆ. ಔರ್ 12 ಸೂರ್ಯೋ ನೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಹೀಟ್ ದಿಯಾ, ಠಂಡ ಲಗ್ನೆ ವಾಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೀಟ್ ಫೊಮೆಂಟೇಷನ್, ಉನ್ಕೋ ಉನ್ಹೊನೆ ಗರ್ಮಿ ದಿಯಾ, ತೊ ಉನ್ಕಾ ಠಂಡ ನಿಕಲ್ ಗಯಾ, ಗರಮ್ ಮಹಸೂಸ್ ಕಿಯಾ, ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಪಸೀನಾ ಆಯಾ. ಉನ್ಕಾ ಪಸೀನಾ ಹಮಾರೆ ಜೈಸಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಪಸೀನಾ ಸುಗಂಧಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ದಿವ್ಯ ಜಲ್ ಕಹತೆ ಉಸ್ಕೋ, ಸ್ವೇದ್ ಕಹತೆ ಹೈ, ಸ್ವೇದ್ ಸ್ವೇದ್ ಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಹೈ, ಜೋ ಪಸೀನಾ ಜೋ ಬದ್ಬೂ ವಾಲಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಸ್ವೇದ್ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಸುಗಂಧಿತ ಹೋತಾ ಹೈ, ಔರ್ ದಿವ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೊ ವೋ ಸುಗಂಧಿತ ದಿವ್ಯ ಜೋ ಜಲ್ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶರೀರ ಸೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹುವಾ, ಔರ್ ಫಿರ್ ವೋ ನೀಚೆ ಉತರಾ ಪಹಾಡ್ ಸೇ, ಔರ್ ಏಕ್ ಜಗಹ ಇಕಟ್ಠಾ ಹೋ ಗಯಾ. ತೊ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಪ್ರಸ್ಕಂದನ್ ಸರೋವರ್. ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಸೇ ಆಜ್ ಆಜ್ ವೋ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಸರೋವರ್ ನಹೀ ಹೈ, ನಷ್ಟ ಹೋ ಗಯಾ ವೋ, ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಮೇ 32 ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಆಯಾ ಥಾ ತೊ ಉಸ್ಕೋ ಮೇನೆ ದರ್ಶನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಪ್ರಸ್ಕಂದನ್ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇ ಹೈ ಪಸೀನಾ ಬಹನಾ, ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಸ್ಕಂದನ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ಕಂದನ್. ತೊ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಪ್ರಸ್ಕಂದನ್ ಸರೋವರ್. ತೊ ಉಸಿ ಜಗಹ ಪರ್ ವೋ ಜೋ ಪರ್ವತ್ ಥಾ, ಉಸ್ ಜಗಹ ಪರ್ ಫಿರ್ ಹಮಾರೇ ಏಕ್ ಗುರುಜಿ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಜೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಲ್ ಮೇ 500 ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ 400 ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಉನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ. ತೊ ವೋ ದೋ ಭಾಯಿ ಥೇ, ರೂಪ್ ಔರ್ ಸನಾತನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ವೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಕೆ ಆದೇಶ ಸೇ ಬೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಆಯೆ ಥೇ. ಹಮಾರೇ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮತಲಬ್ ಕೌನ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್, ಉನ್ಹೊನೆ ಅವತಾರ ಲಿಯಾ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ. ವೋ 5000 ಪಹಲೆ ಭಗವಾನ್ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ 500 ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ನೇ ದುಬಾರಾ ಅವತಾರ ಲಿಯಾ, ಭಕ್ತ ಕೆ ರೂಪ್ ಮೇ ಲಿಯಾ. ತೊ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ಥಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇ ಇನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೋ ಕೋ ಆದೇಶ ದಿಯಾ ಕಿ ಆಪ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಚಲೇ ಜಾವೋ, ಔರ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಕೆ ಲುಪ್ತ ಸ್ಥಾನೋ ಕೋ ಆಪ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರೋ. ತೊ ಫಿರ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಯೆ ಯಹಾಂ ಪರ್, ಔರ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗ್ತೆ ಥೇ. ತೊ ಏಕ್ ದಿನ ಮಥುರಾ ಚಲೇ ಗಯೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಚೌಬೆ ಕೆ ಘರ್ ಪೇ ಚಲೇ ಗಯೆ. ತೊ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚೌಬೆ ಕಿ ಜೋ ಪತ್ನಿ ಥೀ, ಚೌಬೆ ಯಾನಿ ಚತುರ್ವೇದಿ, ವೋ ಜೋ ಪತ್ನಿ ಥೀ ಉನ್ಕಿ, ವೋ ಠಾಕೂರ್ ಜಿ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಥೀ, ಮತಲಬ್ ವಿಗ್ರಹ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹಿ. ವೋ ಡಾಂಟ್ ರಹಿ ಹೈ ಕಿ ತುಮ್ ಸಮಯ ಪರ್ ಖಾನಾ ಖಾನೆ ನಹೀ ಆತೆ ಹೋ, ದಿನ ಭರ್ ಖೇಲ್ತೆ ರಹತೆ ಹೋ, ಮೈ ಯಹಾಂ ಭೋಜನ ಬನಾ ಕೆ ರಖತಿ ಹೂಂ, ಔರ್ ತುಮ್ ನಹೀ ಆತೆ ಹೋ. ತೊ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಮಾಂಗ್ನೆ ಖಡೆ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ಲಗ ರಹಾ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಡಾಂಟ್ ರಹಿ ಹೈ. ತೊ ಉನ್ಹೊನೆ ಮೈಯಾ ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ ಕಿ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಡಾಂಟತೆ ನಹೀ, ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಬಡಿ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಸೇವಾ ಕರ್ನಿ ಹೋತಿ ಹೈ, ಆದರ ಸೇ ಸೇವಾ ಕರ್ನಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ತೊ ಮೈಯಾ ಬಹುತ್ ಡರ್ ಗಯೆ ಕಿ ಮೈನೆ ತೋ ಅಪರಾಧ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಔರ್ ಏಕದಮ್ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಏಕದಮ್ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಆರತಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ. ತೊ ರಾತ್ ಕೋ ಜಬ್ ಯೇ ಭಿಕ್ಷಾ ಲೇಕರ್ ಲೌಟ್ ಕೆ ಆಯೆ ನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ತೊ ಉನ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಆಯೆ. ಆಪ್ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ಸುನ್ನಾ ಕಥಾ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಕಥಾ ಹೈ. ದಿನ ಮೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಉಸ್ ಮಾತಾ ಜಿ ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ ಸಾಧು ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಕಿ ಐಸಾ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ರಾತ್ ಮೇ ಜಬ್ ಘರ್ ಲೌಟೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಲೇಕರ್ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ, ಘರ್ ಮತಲಬ್ ಘರ್ ನಹೀ ಥಾ ಉನ್ಕಾ, ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ನಿವಾಸ ಥಾ ಉನ್ಕಾ. ಜಬ್ ವೃಂದಾವನ್ ಲೌಟೆ ತೊ ಉನ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಆಯೆ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಉನ್ಕೋ ವೋ ಡಾಂಟಾ ಕಿ ವೋ ಮೈಯಾ ಮೇರಿ ಬಡಿ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಸೇವಾ ಕರ್ ರಹಿ ಥೀ, ಉಸ್ಕಿ ಡಾಂಟ್ ಮೇ ಮುಜೆ ಬಡಿ ಮೀಠಿ ಲಗ ರಹಿ ಥೀ, ಔರ್ ತುಮ್ನೆ ಆಕೆ ಪೂರಾ ಭಾವ ಬದಲ್ ದಿಯಾ ಉಸ್ಕಾ. ತುಮ್ನೆ ಡಾಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕೆ ಉನ್ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ ಕಿ ಐಸಾ ನಿಯಮ ಹೋತಾ ಹೈ, ಔರ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಪೂರಾ ಮೈಯಾ ಕಾ ಭಾವ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ, ಅಬ್ ಮುಜೆ ವಹಾಂ ಮಜಾ ನಹೀ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಮೈಯಾ ಕೋ ಸ್ವಪ್ನ ದಿಯಾ, ವೋ ಕಹಾ ಕಿ ಅಭಿ ತುಮ್ನೆ ತು ಮೇರಿ ಆರತಿ ಪೂಜಾ ಶುರು ಕರ್ ದಿ, ಡಾಂಟ್ ಕರ್ನಾ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಮುಜೆ ಯಹಾಂ ಮನ್ ನಹೀ ಲಗ ರಹಾ ಹೈ, अभी कल तुम्हारे दरवाजे पे वही साधु वापस आएगा जिसने आपको सब सिखाया, वापस आएगा तो तुम्हें, तुम मुझे उनको दे देना, दान में दे देना, और वो ले जाएंगे मुझे वृंदावन में। इनको स्वप्न दिया, कल वहां जाना और भिक्षा मांगना तो मैया आपको मुझे दे देगी, मुझे लेकर आप वृंदावन आ जाना। तो वैसे गए आदेश के अनुसार, तो आते ही मैया रोते रोते मैया ने भगवान को दे दिया इनके हाथ में, और बोले मेरे ख्याल से मेरे सेवा से भगवान पसंद नहीं है, नाराज हो गए हैं, इसलिए अभी आपके साथ जाना चाहते हैं। बहुत रोई वो ब्रजवासी मैया, तो ये उनको लेकर आए। और आते वक्त अभी देखो हम लोग अभी बता रहे हैं आपको कि भगवान से बात कर रहे हैं, तो हमसे तो बात नहीं करते, हम मंदिर में जाके आए कृष्ण बलराम के, भी हमसे तो बात नहीं किया उन्होंने कुछ, उनसे कैसे बात करते हैं। तो जब हमारा हृदय पवित्र होता है ना सब विकारों से, आओ बैठो, जब विकारों से मुक्त हो जाता है और काम क्रोध वासना खत्म हो जाती है, तो जब हृदय शुद्ध होता है ना तो भगवान हमसे भी बात कर सकते हैं। कल मैंने एक सुंदर वाक्य पढ़ा, व्हेन प्योर कैरेक्टर डेवलप्स श्री कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ, जब हमारा चरित्र शुद्ध होकर पवित्र हो जाता है तो भगवान अपने हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं, और फिर वो मूर्ति नहीं बचती, फिर प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तब वो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, फिर हमारे लिए वो मूर्ति बचती नहीं है, पत्थर की लकड़ी की वही नहीं बचती, जैसे हम और आप है वैसे वो भगवान हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भगवान के भक्त हैं, तो रास्ता में बात कर रहे हैं, मथुरा से लेके आ रहे हैं उनको ना वृंदावन, तो रास्ता में क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अरे आप तो मेरे पास आए, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मैं तो भिक्षा मांग के खाना खाता हूँ, और आप तो भगवान हो, छप्पन भोग खाने वाले हो, मेरे पास छप्पन भोग नहीं है आपके लिए, तो मैं क्या खिलाऊंगा आपको, ऊपर से मेरे पास घर भी नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ। और वो भी हमारा नियम सन्यासियों का होता है कि 3 दिन के बाद पेड़ भी बदले करना पड़ता है, क्यों, आप बोलेंगे अच्छा पेड़ है, छाया भी अच्छी है, फल भी अच्छे मिलते हैं, तो यही रख जाए, यही पेड़ अच्छा है, तो पेड़ से भी आसक्त हो जाते हैं, इसलिए 3 दिन के बाद पेड़ भी बदले करना पड़ता है। तो आप तो भगवान हो, उसकी भी सेवा कैसे कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, जो आप भिक्षा में प्राप्त करोगे वो मुझे अर्पण करो, मैं उसको खाया करूँगा। बोले ठीक है, रहने लगे। फिर बहुत दिन, अभी वो क्या खाते थे मालूम है, वो भिक्षा करते थे ना तो उनको लोग आटा देते थे, आटा गेहूँ का, तो वो आटा जमुना जी के जल में भिगाते थे और उसकी गोली बनाते थे, और वो गोली आग में भूनते थे उसको डायरेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग, और उसको बोलते हैं बाटी, हाँ राजस्थानी आइटम है बाटी, लेकिन आज की बाटी कैसे होती है, वो घी में तलते हैं उसको, उसमें मसाला डालते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, और तो स्वादिष्ट बनता है वो। उस जमाने में बाटी का मतलब वो महाराज की गोली सीधा अग्नि में, चूल्हे में, फिर वो बेक होगी, पकेगी, और फिर वो भगवान को भोग लगा के खाते थे। तो रोज खिलाते थे उनको, रोज बाटी खिलाते थे, ना नमक ना मिर्ची ना कुछ नहीं उसके अंदर। एक दिन भगवान बोले अरे महाराज कितना दिन बिना नमक का खिलाओगे, कुछ नमक डाला करो, कुछ मिर्ची मिर्ची को स्वाद हो उसके अंदर। तो महाराज जी बोलते हैं अरे भगवान आपको मैंने पहले बताया था मैं फकीर आदमी हूँ, आज नमक मांग रहे हो, कल मिठाई मांगोगे, मैं कहाँ से दूंगा मिठाई आपको, जो है मेरे पास वो खाओ। तो ठाकुर जी ने लीला किया उनके साथ नमक के लिए। रामचंद्र कपूर नाम का एक व्यापारी पंजाब से नमक का जहाज लेके निकला, बराबर नदी को क्रॉस करते करते जमुना जी में पहुंचा वो, और जब वृंदावन में आया ना वो, तो उसका जहाज तूफान में फंस गया, तूफान पैदा हो गया, तूफान में फंस गया वो, तो कैसे भी करके वो जंप मार के तैरते हुए किनारे पे आया और चिल्लाने लगा मेरा जहाज डूब रहा है, मेरा जहाज डूब रहा है, कोई बचा लो, कोई मदद करो। तो उस समय मदन मोहन जी जो ठाकुर जी है ना, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक बालक बनकर, विग्रह ऊपर है लेकिन नीचे बालक बनकर खेल रहे हैं। तो वो बालक बने हुए भगवान क्या बोलते हैं, ऊपर एक महाराज बैठे हुए हैं, वो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वो अपनी कृपा करेंगे तो आपका जहाज बच जाएगा। तो ये आशा से ऊपर जाता है, कौन महाराज है, बोले तो सनातन जी महाराज बैठे हुए हैं। तो बोले महाराज मेरा जहाज डूब रहा है, तो कहते हैं मदन मोहन जी बचाएंगे आप। उतने में नीचे मदन मोहन जी जो खेल रहे हैं वो क्या करते हैं, अपना फेटा निकालते हैं और ऐसे हवा में घुमाते हैं और वायु की दिशा बदलते हैं और वो जहाज को खींच के किनारे पे लेके आते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वायु की दिशा बदल के उसको वो सक्शन से वो जहाज को किनारे लेके आते हैं, और वे आदमी नीचे उतर देखता है तब तक जहाज किनारे पे आ चुका है। तो कहता है अरे बाबा की कृपा है, तो बालक बोलता है कि बाबा की कृपा है, बाबा बोलते हैं बालक की, मदन मोहन की कृपा है, पता नहीं किसकी कृपा है। तो वो रामचंद्र कपूर जो है बड़े प्रसन्न हो जाते, कहते कि आपने मेरी जान तो बचा ली, जहाज भी बचा लिया, आप चाहे जो ले लो उसके अंदर से। तो नमक लेके भगवान को अर्पण करते हैं। फिर वो सब जितना सामान नमक वगैरह था सब बेच के बहुत पैसा आता है, दोबारा यहाँ पर आता है। तो महाराज जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत मैं आपसे ऋणी हूँ, आपके लिए क्या सेवा करना बताओ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो सनातन जी महाराज कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मदन मोहन जी पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके लिए मंदिर बनाओ। तो रामचंद्र कपूर ने मंदिर बनाया टील पर, जहाँ पर भगवान को 12 सूर्यों ने उष्णता दिया था, उसी टील पर मदन मोहन जी के लिए रामचंद्र कपूर ने मंदिर बनाया। 1680 में पूरा हुआ मंदिर वो, और आज के ज़माने में जब पूरा ब्रज लुप्त हो चुका था उस समय सबसे पहले बना हुआ मंदिर है। उस कुएं उस मंदिर में ऊपर जो पहाड़ है, उस पहाड़ में भगवान ने अपनी मुरली से सनातन गोस्वामी के लिए कुआं बनाया, उसका नाम है वेणुकूप। अभी कभी आपने सुना है क्या पत्थर में पानी निकलता है? कभी अपन जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उधर से कुआं बनता है या बोरवेल जो भी आपका पंप हैंड पंप बनता है, लेकिन आज भी आप जाके देखिए आप वहाँ पर पहाड़ पर कुआं बना हुआ है और 12 महीने उसमें भरा हुआ पानी रहता है, और वहाँ का जल पीना एक बड़ी भाग्य की बात है। आप जाएंगे तो आपको साधु वहाँ पर पानी निकाल कर आपको पिलाएंगे, इतना मीठा जल ठंडा है, पहाड़ के अंदर कुआं बना हुआ है वेणुकूप। और वहाँ पर वो कुएं के बाजू में महाराज जी की भजन स्थली भी है, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर वो भजन किया करते थे। तो वो पेड़ पर आपको क्या क्या देखना है, एक तो वो जगह दिखाऊंगा मैं जहाँ पर आप, ये सरोवर नहीं है लेकिन वहाँ था प्रस्कंदन सरोवर, ऊपर एक जगह है द्वादश आदित्य टील। क्या नाम का मतलब क्या है? द्वादश मतलब 12, आदित्य मतलब सूर्य, टील मतलब टेकड़ी। तो जिस जगह पर 12 सूर्यों ने भगवान को उष्णता दिया था, गर्मी दी थी, वो जगह है। फिर सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है, फिर कुआं है, और फिर पीछे मंदिर है। ये सब आपको पहाड़ पे चढ़कर दर्शन करना है। ये जगह हो गई मदन मोहन जी का मंदिर, उसके नीचे हमारे सनातन गोस्वामी की समाधि भी है, वहाँ पर उनका शरीर रखा गया है। तो ये मंदिर का महत्व क्या है, इसके एक इतिहास है कि जब भगवान चले गए अपनी लीला समाप्त करके, तो वज्रनाभ थे ना, वज्रनाभ आपको मैंने बताया ना वज्रनाभ के बारे में, उन्होंने भगवान का एक मूर्ति बनाया, और उस समय सब चले गए थे लेकिन एक उत्तरा देवी थी। उत्तरा देवी कौन थी? वो अभिमन्यु की निश्चित ना, हाँ अभिमन्यु की पत्नी थी वो, वही एक जीवित थी जिन्होंने कृष्ण को साक्षात देखा था। तो वो उनको दिखाने गए कि ये मूर्ति कैसी है, तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति के चरण है ना, चरण एकदम भगवान जैसे हैं। तो उस मूर्ति का नाम रखा गया राधा मदन मोहन जी, जो फिर दोबारा प्रकट हुए। कैसे? एक दूसरे आचार्य हैं, उनका नाम है अद्वैत आचार्य, वो सनातन गोस्वामी यहाँ आने के बहुत पहले यहाँ पर भजन कर रहे थे एक वट के नीचे। वो भजन करते करते जमीन से ये विग्रह प्रकट हो गए उनके सामने अपने आप। और अद्वैत आचार्य जब वृंदावन छोड़ के मायापुर चले गए तो उन्होंने ये विग्रह उस चतुर्वेदी को दिए थे। आपको समझ में आया? चौबे बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। तो अद्वैत आचार्य ने इनको प्रकट कराया मदन मोहन जी को, और यहाँ से जाते वक्त वो पुरुषोत्तम चौबे को देखे गए जिसकी पत्नी भगवान को डांट रही थी, तभी ये गए वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए, और वहाँ से फिर वो लौट के इधर आए और फिर वो मंदिर में स्थापन हो गए। फिर जब औरंगजेब पर हमला हुआ तो उनको यहाँ से ले गए भक्त लोग, और जयपुर के राजाओं ने उनको रखा। ये उनकी कथा है इतिहास की। अद्वैत आचार्य ने प्रकट किया, मथुरा गए, मथुरा से सनातन जी उनको वापस लेके आए, फिर मंदिर बनाया, मंदिर में स्थापना किया, फिर औरंगजेब का अटैक हुआ, वो सब जगह मंदिर तोड़ते तोड़ते आ रहा था। तो उस समय वृंदावन के जितने मंदिर के विक्रय थे वो सब साधुओं ने उसको जयपुर भेज दिया। जयपुर के राजपूत से औरंगजेब डरता था, वहाँ पर कभी हमला नहीं हुआ राजपूत के सामने। तो राजपूत वो भक्त थे, वो उन्होंने भगवान के विग्रहों को आसरा दिया। तो उसमें मदन मोहन जी के विग्रह जयपुर चले गए, लेकिन जब जयपुर के वो राजा जिन्होंने मदन मोहन जी का विग्रह का मंदिर बनाया, उसकी लड़की की शादी का समय आया, तो वो बोली कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगी, अगर आप मदन मोहन जी को मेरे साथ में भेजते हो तो ही मैं ससुराल जाऊँगी। तो उन्होंने दहेज में मदन मोहन जी को दिया लड़की को, और लड़की मदन मोहन जी को लेकर ससुराल चली गई। और ससुराल कहाँ पर है? करौली, वो जयपुर के आगे 8 घंटे का अंतर है। तो ससुराल में भी बड़े प्रेम से मदन मोहन जी का मंदिर बनाया गया। और आज मदन मोहन जी का विग्रह जो ओरिजिनल है वो करौली में है। वो लड़की ने बड़े प्रेम से उसको अपने ससुराल ले गई, जमाई ने और पिताजी ने मिलकर उसका बड़ा मंदिर बनाया, और लड़की जब तक जीवित थी उस मंदिर में सेवा करती रही वो। ये उसका इतिहास है मदन मोहन जी का। फिर वज्रनाम ने और एक मूर्ति बनाया और फिर उत्तरा को दिखाया, तो उत्तरा ने कहा कि इसका वक्षस्थल जो है, छाती जो है, वो भगवान की तरह है, तो उसका नाम रखा राधा गोविंद जी। उसके भी मंदिर वृंदावन में है। और तीसरा मंदिर मूर्ति बनाया, फिर उत्तरा को दिखाया, तो उत्तरा ने कहा कि इसका मुख कमल जो है वो साक्षात भगवान की तरह है, तो फिर उसका नाम है राधा गोपीनाथ जी, और वो भी यहाँ पर वृंदावन में विराजमान है। तो ये तीन मूर्तियाँ जो है, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, ये वृंदावन के प्रमुख विग्रह हैं। और उसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि एक के पैर भगवान के समान है, एक की छाती भगवान के समान है, एक का मुख भगवान के समान है। तो ऐसे कहा गया है कि मदन मोहन जी जो है इनके पैर भगवान के समान हैं। जब हम उनके पैरों से साथ संबंध करते हैं तो वो अपने को जोड़ लेते हैं अपने से। मदन मोहन जी का महत्व यह है कि मदन मोहन जी हमको दुनिया के संबंधों से विरक्त कराते हैं, दुनिया के मोहों से मुक्त कराते हैं, दुनिया के चकाचौंधियों से फ्री करते हैं हमको, और दुनिया से डिसकनेक्ट करके अपने से कनेक्ट करवाते हैं। ये मदन मोहन जी का काम है। मदन मोहन जी से क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग जब जाएंगे, क्या प्रार्थना करेंगे कि आप हमें अपने से जोड़ लीजिए। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, दुनिया में मन लगा है हमारा, अभी आपसे जोड़ के आपका ऊपर मन लगना चाहिए। जो दुनिया में हमारा मन बटा हुआ है वो आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। फिर जब भगवान के संबंध हमारा जुड़ता है तो फिर गोविंद जी हमको सेवा देते हैं। पहला कनेक्शन, उसके बाद सर्विस, फिर गोविंद जी की कृपा से सेवा प्राप्त होती है। तो उनको अभिधेय कहा गया है, इनको संबंध कहा गया है, संबंध देवता और अभिधेय देवता। अभिधेय देवता यानी गोविंद जी, जो आपको संबंध होने के बाद सेवा देते हैं। तो जब सेवा प्राप्त होती है तो सेवा की परिपूर्णता जो है, परफेक्शन इन सर्विस, बेस्ट सर्विस जो है वो गोपीनाथ जी देते हैं। गोपीनाथ जी हमें उनकी सेवा में परिपूर्णता देते हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेवा करने के लिए, लेकिन गोपीनाथ जी की कृपा से सेवा में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब वो परफेक्ट सेवा हम करते हैं तो कहते हैं भगवान की मुरली सुनाई पड़ती है हमको। जब हृदय शुद्ध होता है, सेवा में लीन हो जाता है, सेवा के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है, सेवा में मन लगता है, तो भगवान की मुरली सुनाई पड़ती है। वैसे भगवान की मुरली सब जगह बज रही है, लेकिन हमारे पास इतना शोर है कि वो सुनाई नहीं पड़ती। जब हमारे आसपास का शोर शांत हो जाता है तो वो मुरली सुनाई पड़ेगी हमको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझो आपको गेट पर कोई पुकार रहा है, यहाँ पर बहुत म्यूजिक बज रही है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये शांत होगा तुरंत आपको पुकार सुनाई पड़ेगी। वैसे हमारे हृदय में बहुत शोर है अभी। किसका शोर है? काम वासना का शोर है, क्रोध का शोर है, लोभ का शोर है, कई प्रकार के शोर है दुनिया के, आसक्ति के। तो भगवान की मुरली नहीं सुनाई पड़ रही। जब ये सारे शोर अंदर के शांत हो जाएंगे ना तो बराबर सुनाई पड़ेगी मुरली। मैं जब वृंदावन में था ना 92 में, मुझे ये कैसे समझ में आया ये बात, इसका बताता हूँ आपको मैं। तो हमारा उधर घर था, थोड़ा दूर है यहाँ से। रात को ना, हर रात को एक दूर मंदिर है यहाँ से जमुना किनारे पे, उधर दिन भर हरि ओम नमः शिवाय का कीर्तन चलता था। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ऐसे कीर्तन रात को सुनाई पड़ता था, लेकिन दिन में सुनाई नहीं पड़ता था। तुमको लगा दिन में नहीं करते क्या? जब 24 घंटा करते हैं तो रात को क्यों सुनाई पड़ता है? क्योंकि रात में हमारे यहाँ का शोर शांत हो जाता था, तब दूर की आवाज़ ठंडे हवा में हमको सुनाई पड़ती थी। लेकिन दिन में हमारे यहाँ का शोर, हॉर्न का, रिक्शा का, टैं टैं टू 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 सब चलता था, तो हमको सुनाई नहीं पड़ता था। रात के 10 बज गए तो सारा वापस हरि ओम नमः शिवाय सुनाई पड़ता था। तब मुझे ये बात समझ में आई कि भगवान की मुरली बज रही है लेकिन सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है, कि हमारे पास शोर कितना है। जब शोर समाप्त हो जाएगा तो मुरली बराबर सुनाई पड़ेगी। तो शोर कब समाप्त होगा? जब हमारा मन और हमारी शरीर भगवान की सेवा में लगेंगे और हम परफेक्ट सेवा उनकी करेंगे तो अपने आप अंदर का शोर खत्म हो जाएगा और फिर भगवान की पुकार सुनाई पड़ेगी। जो हमको कैसे 24 आवर पुकार रहे हैं, लेकिन सुनाई तब पड़ेगा जब आपके अंदर के शोर शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी उसके आगे अभी पता नहीं कितना टाइम मिलेगा अपने को वहाँ जाने के लिए, लेकिन ज़रूर एक मंदिर आपको देखना है, उनका नाम बांके बिहारी है। बांके बिहारी यहाँ के राजा हैं, ब्रज के राजा, और बांके बिहारी का विग्रह वर्ल्ड फेमस है। उसके मंदिर में कभी भी जाओ बहुत भीड़ रहती है, हाँ तो सावधान रहना, अपनी कीमती वस्तुओं को संभालना वहाँ पर, क्योंकि वो भीड़ होती है तो वहाँ पर चोर भी आते हैं, भगवान के दरबार में चोर भी आते हैं, भक्त भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, सब लोग आते हैं। हाँ तो अपने कीमती वस्तुओं को चाहे तो छोड़ के जाना आप यहाँ पे। हाँ तो बांके बिहारी का क्या महत्व है, यहाँ पर एक ना बड़े आचार्य हुए, उनका नाम है स्वामी हरिदास, आपने पता नहीं सुना होगा, बड़े संगीत आचार्य थे वो, 400 साल पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु और साथ में उनका जन्म हुआ है उसी समय का, कंटेम्प्ररीज बोलते हैं उसको। तो ये इतने फक्कड़ साधु थे कि निधि वन में भजन करते थे अकेले, एकांत भजन। इनका भजन इतना शुद्ध था कि उनके भजन के प्रभाव से निधि वन में बांके बिहारी प्रकट हो गया उनके सामने, बांके बिहारी को प्रकट किया उन्होंने अपने भजन से। तो निधि वन में ही रहे, फिर एक व्यक्ति था गांव का व्यक्ति, हाँ वो उसका एक बार मन में आया कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मरूंगा बहुत दिन, जल्दी मर जाऊँगा। तो उसको लगा कि नहीं, अभी सबसे बेस्ट व्यक्ति को उसकी सेवा करनी चाहिए। देखा कि गांव का सरपंच सबसे बड़ा आदमी, उसकी सेवा करने लगा। एक दिन क्या हुआ, को सरपंच जो है उसके सामने मुख्यमंत्री आया, तो वो उसकी सेवा करने लगा। तो इसको समझ में आया कि ये तो उससे बड़ा आदमी है, तो सरपंच छोड़ दिया, मुख्यमंत्री की सेवा में लग गया। तो मुख्यमंत्री की सेवा में बहुत दिन रहा, उसका प्रधानमंत्री आया एक दिन, तो प्रधानमंत्री की सेवा में लग गया, उसकी सेवा छोड़ दिया, क्योंकि उसको सबसे बेस्ट आदमी की सेवा करनी थी। तो देखा कि मुख्यमंत्री भी उसकी सेवा कर रहे, तो फिर वो उसकी सेवा छोड़ के उसकी सेवा में लग गया। बहुत दिन प्रधानमंत्री का सेवा किया, उसके बाद एक दिन राजा मिलने को आया प्रधानमंत्री को, तो देखा कि प्रधानमंत्री राजा की सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये उसको भी छोड़ दिया और राजा की सेवा में गया। मैं राजा के बहुत दिन सेवा किया, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने क्या देखा कि रात को 9-10 बजने के बाद में राजा अपने वस्त्र उतारता है, राजवस्त्र, सिंपल वस्त्र पहनता है, सूती मुकुट उतार देता है, अलंकार को उतार देता है, चप्पल भी उतार देता है, और सिंपल से सूती वस्त्र पहनकर अपना महल छोड़कर नंगे पैर कहीं जाता है, जहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं, इसको भी परमिशन नहीं। तो इसका कुतूहल जागृत हुआ, क्या बात है। तो एक दिन छुप छुप के राजा के पीछे 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 गया वो, तो राजा नंगे पैर रात को निधि वन चला गया। और निधि वन में क्या किया, उधर रात भर बांके बिहारी की पूजा कर रहे हो, बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं। तो इसने राजा का भी सेवा छोड़ दिया और बांके बिहारी की सेवा में आ गया। तो उस समय ठंड का समय था, बांके बिहारी का छोटा सा मंदिर बना हुआ था जहाँ पर राजा ने अपना सेवा किया, किसी को पता नहीं राजा है करके, पूरा ऐसा सामान्य व्यक्ति करके आया। राजा चला गया तो ये राजा के पास साथ चलाने गया, उधर ही रुक गया। तो उतने में रुक गया, तभी क्या हुआ, पुजारी लोग बाहर आए, मंदिर को भगवान को शयन कराया, भगवान को शयन कराया, मंदिर लॉक किया बाहर से, ताला मारा उसको, और निकल रहे हैं, तभी ये आदमी बोला कि मुझे बांके बिहारी का सेवक बनना है। तो बोला कल सवेरे आ जाओ, दे देंगे सेवा आपको। बोलते पता नहीं है मैं कल सवेरे तक जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे आप भी सेवा चाहिए। तो बोल रहे महाराज आप कल आइए, अभी तो भगवान सो चुके हैं, अभी सेवा नहीं है, मंगला में आइए, वहाँ से आपको सेवा दे देंगे। तो ये जिद पे अड़ा हुआ है, मुझे नहीं नहीं मुझे अभी फाइनली मुझे सर्वोच्च आदमी का जान पहचान हो गई है, जानकारी हो गई है, सर्वोच्च आदमी ये भगवान है, अभी समझ में आया मुझे, इसके ऊपर कोई नहीं है, मुझे अभी इनकी सेवा करनी ही करनी है, मरने के पहले करनी है। तो उनको लगा पागल आदमी है। तो बोले एक काम करो, यहाँ पहरा दो, और ये ताला लगाया दरवाजा है ना, इसमें से कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। तो आपको बोलेंगे तो आप हंसेंगे, अरे क्या बात कर रहे हो, ताला लगाया कौन आएगा अंदर इसके, लेकिन अभी बुड्ढे को क्या बोलेंगे, इतना जिद करके खड़ा है तो कुछ सेवा चाहिए। तो बोले तुम खड़े हो जाओ यहाँ पर। तो फिर वो खड़ा हो गया, रात की ठंड है, इतने कांप रहा है बेचारा बुड्ढा। और जैसे ही पुजारी चले गए और ये खड़ा हो गया पहरा देते हुए, बांके बिहारी जी सज धज के बाहर आ गए, ताला मारे हुए दरवाजे से बाहर आ गए। तो ये बोलते अरे ये आप कौन हो, आपको यहाँ से बाहर जाने मना नहीं, मैं बांके बिहारी की सेवा में हूँ, मैं को आदेश दिया बांके बिहारी सेवा में, किसी को अंदर जाने देना नहीं, किसी को बाहर जाने देना नहीं। तो बोलते मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ। तो चरणों में गिर जाते उनके, बोले महाराज मैं आपकी सेवा में जीवन अर्पण करने के लिए आया हूँ, अपनी सेवा में लगाइए। तो बोले कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले रास लीला करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो बांके बिहारी के साथ जाता है बंसी भट्ट के पास, वहाँ पर कहता है अब यहाँ खड़े रहो, मैं अभी लीला करके आता हूँ, यही खड़े रहो। तो ये बाहर वेट करता है। ठाकुर जी रात भर लीला करते हैं बंसी भट्ट के पास, और फिर सुबह के समय अराउंड ना भोर के समय पाठ आते हैं थक के, तब ये खड़ा है उधर, चलो मंदिर चलते हैं वापस। तो थके हुए ठाकुर जी जो है वापस ताला लगा हुए दरवाजे से चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त बोलते तुम यहाँ खड़े रहना, और देखते हैं कि कहाँ पर आए बुड्ढा बेचारा। तो बांके बिहारी जी अपने ऊपर चलाया हुआ शॉल जो है ना वो उसको पहनाते हैं, मैं ठंड लग रही है आप इसको पहन के खड़े रहो, मैं जाता हूँ, मैं विश्राम करूँगा जाके। तो बंद दरवाजे में चले जाते हैं अंदर और चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पुजारी आते हैं सुबह मंगला आरती करने के लिए, तो ताला खोलते हैं तो ये बोलता है पुजारियों को, ए अभी डिस्टर्ब मत करना, अभी अभी सोए हुए आके वो। तो बोलते हैं कि पक्का पागल है ये, रात को तो लगा था थोड़ा पागल है, अभी कन्विंस हो गए कि पूरा ही पागल है ये। तो बोले क्या बात कर रहे हो? बोले मैं अभी जाके रात भर डांस करके आ रहे हैं, वो अभी अभी गए हैं, मैं अभी छोड़ा उनको। तो जोर जोर से हंसते हैं, मंदिर खोलते हैं। जब मंदिर खोलते हैं देखते क्या है, ठाकुर जी के ऊपर जो शॉल चढ़ाया था रात को वो गायब है। तो बाहर आते देखते तो वो शॉल इसके ऊपर है। तो ये शॉल कहाँ से आया? अरे कब से बता रहा हूं मैं कि मैं जब यहां पर खड़ा है ठाकुर जी अंदर चले गए, मुझे शॉल देकर चले गए, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें देखा ही नहीं मेरी तरफ। तब जब देखा कि वही शॉल उसके ऊपर है और ताला बंद था, तो उनको विश्वास हुआ कि ठाकुर जी ने खुद दिया उसको। उस दिन से बांके बिहारी के मंगला आरती 10 बजे होती है, क्योंकि वो क्या समझते हैं 4 बजे भगवान लौट के आते हैं, 6 घंटा सोएंगे, तो 9:30-10 o'clock को मंगला आरती होती है। पूरे ब्रज में एक ही मंदिर है वो, इसकी मंगला आरती 9:30 को होती है। भाव क्या है उसका कि रात भर बांके बिहारी जी रास लीला करते हैं, और फिर मंगला आरती समर में 9:30 को होती है, विंटर में 10 o'clock को होती है, और मंदिर रात तक खुला रहता है 10 o'clock तक। बांके बिहारी जी का मंदिर जाएंगे ना, हर 2 मिनट में पर्दा बंद कर देते हैं। कारण क्या उसका? वो बांके बिहारी जी इतने इतने प्रेम करते अपने भक्तों पर, किसी की नजर मिल गई ना वो मंदिर छोड़ के नीचे आ जाते हैं। एक बार का इतिहास है उसका कि उन्होंने मंदिर बंद कर दिया भोजन लगाने के लिए उनको, तो जब खोला पर्दा तो भगवान अंदर था ही नहीं, बाहर किसी भक्त से बात करते हुए खड़े थे। तब से उन्होंने फिर वो नजर मिलने के पहले काट देने का नजर, इसलिए पर्दा आप ही हर बार ऐसे आगे पीछे आपको आप नजर मिला रहे उनसे अभी देख रहे हैं तो पर्दा बंद, पर्दा ज्यादा नजर नहीं मिलाना ताकि भगवान छोड़ के नहीं चले जाए आपके पीछे, ये भाव से वो बार बार पर्दा ऊपर नीचे करते रहते। अभी अभी की कहानी है, कुछ 50 साल पहले की। वो भगवान को शयन कराया उन्होंने रात को, तो भगवान को ना मिठाई रखते रात को। यहाँ का भाव कैसा है ना, यहाँ पर भगवान को लड्डू पेड़े मिठाई रात को रखते हैं, भगवान कभी भी उठेंगे तो उनको मिठाई चाहिए। तो उस दिन दूध और मिठाई रखना वो भूल गए थे पुजारी लोग, और शयन कराया मंदिर बंद करके चले गए। तो रात के 12 बजे ना एक दुकान है वहाँ पर, अभी भी वो दुकान है, वो आदमी तो चले गए वो, तो वो उधर दूध और मिठाई का उनका दुकान था बांके बिहारी के मंदिर के बाहर, और सब दुकान बंद हो गए थे। ये बेचारा बुढ़ा आदमी भगवान का बड़ा भक्त था, अपने दुकान में कुछ साफ सफाई दूध की तैयारी कर रहा था, वो कल की तैयारी वगैरह, और बंद करके जाने वाला था। तो रात को 12 बजे एक बालक आया उनके पास, बोला बाबा मेरे बड़ी भूख लग रही है, मुझे दूध और मिठाई खानी है। तो बालक बड़ा प्यारा था, तो बेटा खाना नहीं खाया तुमने आज? बोला नहीं, खिलाया नहीं मैया ने मुझे, ऐसे बता दिया उसने। तो उसने अपने दूध जो तैयारी करा था उसको गर्म करके बच्चे को दिया और पूरा मिठाई खिलाया उसको, और बाद में बोला कि पैसे? तो बोला पैसे तो है नहीं मुझ पर, लेकिन ये कंगन मेरा मैं आपको रखता हूँ, और अभी रख लो कंगन, कल मेरी मैया आके पैसा देगी, कंगन छुड़वा लेगी आपसे। तो बोला ठीक है। तो बुड्ढे ने उनका कंगन लिया और बालक चला गया। अगले दिन जब भगवान का मंदिर खोला गया तो भगवान का एक कंगन गायब। तो भी बोल रहे किसने लिया उसको, किसने लिया? तो कोई बोल रहे किसने लिया, मंदिर बंद है, सब कौन लिया? तो पूरी तहकीकात करी तो ये बुड्ढे के पास में वो कंगन मिला। तो उसको लगा कि ये चोर आदमी है, उसने मंदिर तोड़ के उसको कंगन चुराया। तो सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे रात को, तो आप लोगों ने क्या दूध का और मिठाई का भोग लगाना भूल गए थे क्या? हाँ, हम लोग तो कल रात को भूल गए थे। तब सबको जानकारी हुई कि ये लीला भगवान ने इसलिए करी। ऐसे कई कथाएं यहाँ पर हैं ब्रज में, कई मंदिरों की कई कथाएं ऐसी हैं, अद्भुत कथाएं हैं। वो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रहेगा तो सब कहानी सच है, नहीं तो बोलेंगे कि टाइम पास कर रहे हैं, सब बेकार की कथा बता रहे हैं, कौन है भगवान बात करते हैं किससे। लेकिन ये धाम जो है लीला धाम है भगवान का, श्रद्धा से आप सुनेंगे और विश्वास रखेंगे तो सारी कहानी आपको अपने जीवन में होते हुए नजर आएगी। ये चमत्कारी भूमि है बहुत। तो ऐसे बांके बिहारी की अद्भुत कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। और बांके बिहारी बाल भाव में, मतलब वो बालक रूप में हैं और सब लोग उनके बालक रूप में सेवा करते हैं, एक बच्चे की तरह सेवा करते हैं। और भी कारण उसका है पर्दा बंद करने का, किसी की नज़र न लग जाए उसको, इसलिए वो उसको बार बार नज़र काटते रहते हैं उसकी, ऐसा है। तो ये बांके बिहारी का मंदिर है। बांके यानी कि टेढ़े, बांके है ना, तो बांकदार बोलते हैं मराठी में वैसे। उसके आगे एक मंदिर है, उसका नाम है राधा वल्लभ जी। तो उसकी कहानी कह के हम दर्शन को निकल जाएंगे। और राधा वल्लभ जी की कहानी ऐसी है कि आप भोलेनाथ की बात कर रहे थे ना, भोलेनाथ की बात कर रहे थे ना आप, भोलेनाथ की। तो एक आत्मदेव ब्राह्मण था, वो शंकर जी का बड़ा भक्त था और दुनिया भर के लोग शंकर जी से भजन करते तो क्या कुछ मांगते ना उनसे, अच्छी पत्नी दो, अच्छा बच्चा दो, बिजनेस दो, ये दो, सक्सेस दो, कोई बिना हेतु जाता नहीं उनके पास। तो ये लेकिन निरपेक्ष था बहुत, इन्होंने किसी भी हेतु को मन में राह रखते हुए शंकर जी का भजन किया था। शंकर जी प्रसन्न हो गए, एक दिन स्वप्न में आके दर्शन दिया उनको, बोला आत्मदेव मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे और तुमने मेरी बड़ी भाव से सेवा किया है, तो मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहते महाराज मैंने आपसे कुछ हेतु रख के तो भजन किया नहीं था, मैंने तो निरपेक्ष भावना से किया था, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो वो और खुश हो गए, बोले ऐसा कोई भक्त मुझे कभी मिला नहीं आज तक, सब लोग तो मांगने के लिए आते हैं मेरे पास, इतनी बड़ी लिस्ट लेके आते हैं, एक नहीं 50 तरीके मांगते रहते हैं, हर बार नई लिस्ट लेके आते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको ना कुछ तो मांगना ही होगा, क्योंकि हम देवता लोग जब आते हैं तो हमारा दर्शन खाली जाता नहीं है, वो हम देके जाते हैं हमेशा कुछ, तो आपको लेना है हमसे कुछ, मांगो। तो आत्मदेव बहुत सोचता है क्या मांगू, फिर सोच के बोलता है कि हे शंकर भगवान आपको सबसे प्रिय वस्तु क्या है वो मुझे आप दे दो। तो शंकर भगवान तो नाचने लगते हैं, कम प्रेम से तांडव की तरह नाचते हैं, बोले आज तक मुझे मेरी प्रिय वस्तु किसी ने मांगी नहीं, आज तक तुमने मांगी है, ओके तथास्तु मैं आपको मेरी प्रिय वस्तु दे देता हूँ। तो तुरंत उठो, स्नान करो और अपने कुएं में उतरो। आप जानते हैं पुराने जमाने में ना कुआं इतना बड़ा हुआ करता था, उसमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी, आज भी कई कुएं ऐसे हैं जिसमें उतर सकते हैं आप नीचे सीढ़ियों से, एक बोगदा है उसके अंदर, टनल क्या कहते हैं उसको, सुराख, सुरंग है, सुरंग उसके अंदर, उसके अंदर चले जाओ, उस सुरंग के एंड में मेरी सबसे प्रिय वस्तु आपको मिलेगी। तो ये नींद से झट से उठता है स्वप्न से और प्रेरणा लेकर तुरंत स्नान करके कुएं में उतरता है अपने, और राइट साइड में जाता है तो कुएं के राइट साइड के सुरंग के अंदर उनको राधा वल्लभ जी की, कृष्ण की मूर्ति मिलती और वो कहते हैं कि मेरी प्रिय वस्तु उसका भजन करना। तो राधा वल्लभ जी कहते हैं कि अभी हम आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा लेंगे। तब से आत्मदेव ब्राह्मण जो है राधा वल्लभ की सेवा करता है, बहुत साल सेवा करता है, यथावकाश राधा वल्लभ जी स्वप्न में आते हैं और उनको बताते हैं कि मेरे मुरली का अवतार हुआ है, मेरे मुरली का पुरुष अवतार हुआ है, मध्य प्रदेश में ओरछा जगह पर उनका जन्म हुआ है और वो व्यक्ति उनका नाम है हित हरि वंश, हरि यानी हरि, वंश यानी मुरली, वंशी, बंसी, तो उनका नाम हित हरिवंश है गोस्वामी जी। तो वो अभी आ रहे हैं वृंदावन में, जब वो वृंदावन में आएंगे तो आपको देखते ही मन में प्रेरणा होगी कि यही है वो मुरली के अवतार, तो आपकी कन्या विवाह में देना उनको और मुझे भी उनको दहेज में दे देना। और उनको मुरली का अवतार जब हुआ है उनको, उनको स्वप्न देते हैं मुरली के अवतार को कि आप वृंदावन में चले जाना, वहाँ पर मेरे भक्त ब्राह्मण आत्मदेव रहते हैं, उनकी आपकी मुलाकात होगी, उनको देखने से आपको प्रेरणा मिलेगी ये आत्मदेव हैं, तो वो आपको मुझे और अपनी कन्या को अर्पण करेंगे आप उससे विवाह करना और मुझे स्वीकार करना। यथावकाश वो वृंदावन में आते हैं और इनकी मुलाकात होती है वृंदावन के कुंजों में, और देखते ही उनकी आंखों से आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच खड़ा हो जाता है और गले मिलते आंसू बहाते प्रेम के, और तुरंत अपनी कन्या को और राधा वल्लभ जी के विग्रह को लेके आते हैं और इनको अर्पण करते हैं। तो ये विवाह करते हैं, अपनी पत्नी को मध्य प्रदेश भेज देते हैं और यहीं पर रहते हैं वृंदावन में। ये बाजू में हमारे हॉस्पिस के बाजू में एक जगह है, 2 मिनट के अंदर, अभी अंधेरा हो गया दिखा नहीं पड़ेगा, वहाँ पर वो वन में रहे हैं वो राधा वल्लभ जी। पेड़ के बीच में जगह होती थी ना, उसको क्या बोलते हैं, ढोली, ढोली पेड़ के अंदर जगह होती थी, साधु लोग वहाँ रहा करते थे। तो पेड़ के ढोली के अंदर उन्होंने राधा वल्लभ जी का सेवा किया है। किसने? मुरली के अवतार हित हरिवंश गोस्वामी महाराज, ये स्वामी हरिदास भी उनके समय के थे। तो कई साल राधा वल्लभ जी का सेवा करने के पश्चात उन्होंने, उनका एक शिष्य था, वो डाकू था, वो शिष्य बन गया उनका, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो भक्त बन गया। तो उसने फिर पैसा देकर अपने लूटे हुए पैसे वगैरह जो पश्चाताप हुआ तो सारा पैसा लगाकर राधा वल्लभ जी का मंदिर बनाया जो बांकी बिहारी जी के बिल्कुल पास में है, और आज बांकी बिहारी जी वहाँ विराजमान है उस मंदिर में। तो छोटी सी कहानी है राधा वल्लभ जी की। ऐसे वृंदावन में 5,000 मंदिर है, किसकी किसकी कथा सुनेंगे आप? हाँ, पूरा लीलाओं से भरा हुआ है, हर जगह भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान प्रकट हो गए हैं। तो आज की कथा हम यहाँ पर विराम देते हैं उसको, तो आपको फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग पहले कालियाघाट जाएंगे, कालियाघाट पे आप तुरंत दर्शन कर लेना, कथा आपने सुनी है पूरी, भगवान ने छलांग लगाया, भगवान ने कालिया का दमन किया, भगवान ने कालिया को भक्त बनाया, वो चले गए यहाँ से। तो पेड़ है वहाँ पर, उसमें अमृत का कलश है, वो सब दिखाएंगे। उसके बाद में हम पहाड़ पे चढ़ेंगे और क्विकली मदन मोहन का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा में आपको वो कुआं मिलेगा, उनका भजन कुटी मिलेगा, उसके बाद में वो बैठने की जगह मिलेगी जहाँ भगवान बैठे थे, वो करके हम लोग उतरेंगे और बांकी बिहारी के मंदिर जाएंगे। तुरंत दर्शन करेंगे, बाहर आएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे और राधा वल्लभ जी के मंदिर जाएंगे। हाँ, और थोड़ा तेज़ चलना ज़रूरी है क्योंकि मंदिर अभी बंद होने का समय चालू हो जाएगा, तो अगर हम आराम से चलेंगे तो फिर वो एकाधा दर्शन मिस हो जाएगा। हाँ, श्री श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा मदन मोहन जी की जय।